أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. دار الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيعنا بالقاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقال الله سبحانه تبارك وتعالى: وهو أصدق الصادقين، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صلوات محمد وعلى آله. سن 1428 ہجری کی محرم الحرام کی آج پانچویں تاریخ گزر گئی. ترجمہ آپ کو یاد ہو چکا ہوگا، مطلب آپ کے ذہن نشین ہو چکا ہوگا کہ شاید یہ عبد سہرائی ہو رہا ہے کہ چونکہ ضرور قاعدہ لطف بندوں کی ہدایت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اس لیے ہم نے رسول کو منتخب کیا ہے تمہارے درمیان سے، جو تمہاری بے چینی پر تڑپ جاتا ہے، تمہاری ہدایت کے لیے یہ والا و شہدا ہے، مومنین پر رؤوف و رحیم ہے. اب اس کے بعد اگر کوئی منہ پھیرتا ہے، جو کچھ لوگ منہ پھیرتے ہیں، تو آپ فرمائیے کہ میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میں نے اسی پر توکل کیا ہے، وہ عرش عظیم کا مالک ہے. صلوات محمد و آل بہت ہی ڈرتے ڈرتے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں کہ اب تک کی گفتگو سے آپ کو یہ اندازہ ضرور ہو گیا ہوگا کہ وہ اسلام جو ہماری سوسائٹی میں پریویل کر رہا ہے، رائج ہے، وہ اس اسلام سے بالکل الگ ہے کہ جس کو قرآن پیش کر رہا ہے اور جس کو رسول نے پیش فرمایا ہے، جس کو آئمہ طاہرین نے پیش فرمایا ہے، جو دین و شریعت کی شکل میں آج بھی محفوظ ہے. دو منٹ مجھے دے دیجیے ری کیپنگ کے لیے. آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ شریعت اسلامیہ کی فاؤنڈیشن دو پلرز پر، دو کھمبوں پر ٹکی ہوئی ہے، جلب منفعت اور دفع مضرت. سوسائٹی کے لیے، سماج کے لیے، معاشرے کے لیے ہر وہ شہر جو نفع بخش ہو، لابھ دائک ہو. میں ہندوستان سے آ رہا ہوں، ہندی بھی بولنا پڑتی بھائی، کیا کہوں، زبان سے دنیا نکل جاتے ہیں، عادت ہوتی ہے ہندی بولنے کی. نفع بخش ہو سوسائٹی کو، جس سے نفع پہنچتا ہو وہ لے لو، وہ اسلام ہے. ہر وہ شہر جس سے تم کو، تمہاری فیملی کو، سوسائٹی کو نقصان پہنچتا ہو، اس کو نکال باہر کر دو، وہ اسلام نہیں ہے. مالی منفعت اگر تم کو مل رہی ہے، کسی شہر سے لے لو. جوا کھیلنے میں نقصان ہے، چھوڑو. بزنس کرنے میں فائدہ ہے، لے لو. انٹرسٹ بیس اکانومی میں امیروں کا فائدہ ہوتا ہے، غریبوں کا نقصان ہوتا ہے، چھوڑو. میں نے سیاح سامنے کے انٹرسٹ بیس اکانومی میں میں گوار ہی نہیں بات کہہ گیا، اسلام کا اکنامک سسٹم زکات بیس ہے. زکات بیس سسٹم میں امیروں کا پیسہ غریبوں کے پاس جاتا ہے. انٹرسٹ بیس اکانومی میں غریبوں کا پیسہ امیروں کے پاس جاتا ہے. इनका नुकसान होता है तब उनका कोई इससे चूंकि सोसाइटी के तबके को नुकसान पहुंचता है, लिहाजा से निकाल बाहर कर दो। उसके बाद मैंने आपके सामने बताया कि शरीयत ऐसे हथर्ड में बनी ही नहीं है, उसके पांच मकसद है, पांच टारगेट है जहां वो मुसलमानों को लेकर जाना चाहती है। पहला मकसद ये कि मुसलमानों को जहीन होना चाहिए, मामला फहम होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए, इमोशनल नहीं होना चाहिए, उनका रद्द अमल आकलाना होना चाहिए, जज्बाती नहीं होना चाहिए। अक्ल इंसान की रहनुमाई करती है, जज्बात इंसान को गुमराह करते हैं। देखिए आप जरा गौर तो कीजिए। उसके बाद दीन दूसरा मकसद है, दीन के माने हैं दीनदारी। किसी की दर्दारी आपको आजमाना है, मैं आपके सामने पर्सनल तजुर्बा कर रहा हूँ उसकी, और इमाम ने फरमाया भी है, आप आजमा लीजिए। नमाजों से किसी का दीन थोड़ी तय होता है, रोजों से किसी का दीन नहीं तय होता, ये इमाम ने भी कहा, मेरा तजुर्बा भी है। किसने कितने हज किए इससे दीन तय नहीं होता। जो हाजी है, जो नमाजी है, जो खाली है, उसे किसी वक्त का मुतवल्ली बना दीजिए। फिर देखिए कि कितनी तेजी से वो वक्त को खाना शुरू करता है, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये दीदार नहीं था। दीदारी इंसान की माली मामलात में ही खपत कराई जाती है। जो मामली माली मामलात में, फाइनेंशियल मैटर्स में बाईमान हो, वो है दीदार। इमाम का फर्ज करता है, मैं तो नहीं तो मुआशरे में अगर एक ऐसे सिस्टम फैल जाए जिसमें कहीं करप्शन न हो, जहां लोटे न पाए जाते हो, बिकाऊ माल की शक्ल में इंसान मौजूद न हो, तो एक आइडियल मुआशरा है कि नहीं। उसके बाद हिफाजत जान रहो, लंबी जिंदगी पाकर रहो, सेहतमंद रहो, हेल्दी रहो, ये बुरी चीज है। उसके बाद माल, गरीब न रहो, फकीर न रहो, न फकीर रहो न किसी को फकीर रहने दो। ये शरीयत का किस्सा है भाई, खुदा के लिए समझिए। न खुद गरीब रहो न किसी को गरीब रहने दो। मौला अली के जमाने में तारीख को पढ़िए, कितने बरस हुए थे इस्लाम को आए हुए, मगर लोगों का आलम यह था कि वो ऊंटों के ऊपर जकात का माल लगते हुए घूमा करते थे कि कोई मुस्तहक मिल जाए तो हम दे दें। मिलता ही नहीं था, पॉवर्टी खत्म, गुर्बत खत्म हो गई थी। ये किसकी बरकत थी? इस्लाम की। ये किसकी बरकत थी? दीन की। मैं अपने मुल्क को कह रहा हूं, हिंदुस्तान को आजाद हुए अब 60 बरस हो चुके, उससे ज्यादा, और पाकिस्तान को भी तू ही नहीं ना, दोनों भाई भाई हैं दोनों, जो इसकी उम्र है वो उसकी उम्र है, तो पाकिस्तान थोड़ा सा बड़ा है, ये 14 अगस्त को बना है, वो 15 अगस्त को, ये सीनियर है, एक दिन से सीनियर से भी पाकिस्तान को बड़ा हासिल है। तो अब तो मेरा मकसद है, हिंदुस्तान को आजाद हुए 60 बरस हो चुके, यानी अब आजादी की कमर झुकने लगी, मगर सुनिए, अब तो मैं तुम उनकी बात कर रहा हूँ ना, दुनिया में इस वक्त 60 करोड़ लोग हैं, 60 करोड़, 60 नहीं, 60, 60, 15, 6, कितनी दफा मैं बताऊं, 60 करोड़ लोग हैं कि जो गरीबी की लाइन के नीचे हैं। इन 60 करोड़ में से 30 करोड़ फकत बफजल खुदा हिंदुस्तान में पाए जाते हैं, आधे पूरे में से आधे फकत हिंदुस्तान में, या ऑफिसर हुआ है किसी सदस्य है और आधे है पूरी दुनिया। यह है आजादी की बरकत। और इस्लाम आया तो चंद वर्ष में लोग हैरान है चंद किसको दे, कोई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, कोई ज़कात का पैसा पूर्ण करने के लिए तैयार नहीं। अखलाकी मुश्किलें कितने हल की, इस्लाम में। बीमारियों की मुश्किलें कितने हल की, इस्लाम में। माली मुश्किल कितने हल किए, इस्लाम में। बेवकूफों को साहिबिया को किसने बनाया, इस्लाम में। तो इस्लाम है मुश्किल हल के नहीं है, ये कोई कोई ये कोई छोरी की चीज छोड़ी तो आपका ऑब्जर्वेशन है तारीफ मुशाहिदा का। उसके बाद हिफाजत है नस्ल, पाक पाकीज़ा नस्ल, प्यारे प्यारे बच्चे, नाम और नस्ब जानने वाले बच्चे जो फख्र से कहें कि हम फुलां के बेटे, यह फख्र से कहें कि आपको पता ही नहीं कौन हमारा बाप था। भाई ये वाकई है, मैं समझ रहा हूँ यूरोप अमरीका में आज बच्चे जो इलिटरेट होते हैं वो फख्र से कहते हैं कि हम लखनऊसी नहीं है, हम मॉडर्न है, हम मॉडर्न, हमको नहीं पता कि हमारा बाप कौन था, ब्लडी फादर, हू आर माई ब्लडी फादर, उनको नहीं पता है। तो इस्लाम ने मुश्किलें अजीजों हल्की या नहीं की। अब मैंने कल आपके सामने यह किया है कि मुश्किल पैदा होती है नावाकफी से, शरीयत बहुत आसान है, बहुत आसान है अगर आपको शरीयत के फंडामेंटल्स मालूम हो जाएं, तो बहुत कम आपको किसी को आदमी जी के पास आपको जाना होगा मसाइल मालूम करने के, जुजी मसाइल मानने करने का आपको जाना होगा। लेकिन आप इस मुश्किल में फंसेंगे तो आप समझ लेंगे इस्लाम का रास्ता क्या है, किधर इस्लाम में जाना चाह रहा है। एक बार दबा सलवा देंगे आप लोग, कहते हैं आपके इस्लाम बहुत मुश्किल है, किधर मुश्किल इस्लाम, जो खुद मुश्किल होगा मुश्किलों को क्या हल करेगा भाई। तो कल मैंने जो बात करी थी यहां से, इस्लामी शरीयत का फंडामेंटल प्रिंसिपल यह है, जिसको कुरान ने तीन जगह अलग अलग तरीकों से बयान किया, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युसर वला युरीदु बिकुमुल उसर। ये किसी तकनीफ का टुकड़ा नहीं है, ये कलाम इलाही का टुकड़ा है कि वो अल्लाह जब उसने रसूल वो भेजा है कि जो रऊफ और रहीम है, तो वो खुद कितना रऊफ और रहीम होगा, वो तुमको दीन के जरिए से मुश्किलों में नहीं फंसाना चाहता है, सब समझ लो इस्लाम का बस। तो अब आसानी पर देश है ये इस्लाम, इसलिए शरीयत करानी है शरीयत पहला, यानी आसान शरीयत, ना वाकफियत दे जाते आप फंस जाते मुश्किल आते। तो मैं आपको फंडामेंटल्स बता रहा हूं, इन फंडामेंटल्स की रोशनी में बहुत से मसाइल आप दूसरों से पूछे बगैर इंशाल्लाह खुद ही हल कर लेंगे और प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर लेंगे। जिसमें पहला उसूल यह है कि इस्लाम में आसानी है दुश्वारी नहीं है, यही सीरत रसूल की। रसूल की सीरत हमको ये मिलती है कि जब रसूल को एक मंजिल तक पहुंचने के लिए या एक हदफ या टारगेट तक पहुंचने के लिए दो रास्ते होते थे, दो च्वाइसेस होती थी, एक मुश्किल और एक आसान, तो रसूल हमेशा आसान रास्ता इख्तियार किया। ये सीरत रसूल है। रसूल जब मुबल्लिगीन को तबलीग के लिए दूसरे इलाकों में भेजा करते थे तो उनको हिदायत देते थे कि यस्सिरु वला तुस्सिरु, तुम रहीम व करीम अल्लाह के भेजे हुए दीन के नुमाइंदे बनकर जा रहे हो, लोगों के लिए दीन के जरिए से आसानियां पैदा करो, मुश्किलों को मिटाते चले जाओ। सुन्नी शिया दोनों किताबों में यह हदीस یہ ہدایت رسول ڈائریکشن ایک جگہ بطور زلزل الزا پر موجود ہے. ہمارے یہاں میں بھولے بول رہی ہوں بھائی, سوچتا ہوں کہوں کیسے, جو بات مزاج کے خلاف ہوتی ہے اس کو کہنے کے لیے ذرا مجھے رکنا پڑتا ہے. ہمارے یہاں نماز کی کامیابی کی اور قبولیت کی سند یہ ہے کہ جتنی لمبی نماز امام جماعت پڑھائے اتنا ہی وہ مقدس ہے, اور بولا ظالم اس بات کا ضرور اٹکے نکلے ہی نہیں, اتنی مشکل سے نکلنے کے بعد میں پیچھے والے کہیں کہ الحمدللہ رب العالمین داد نکل گیا, جان بچ گئی. مگر زمانے رسول میں شام بدر میں ایسے ہی نماز پڑھاتے تھے تو رسول ان کو سینے سے ہی لگایا, جب رسول کے سامنے آئے تو پیشانی پر شکن پڑ گئی, یہ کیا کرتے ہو تم, کیا تم لوگوں کو اسلام سے بھگانا چاہتے ہو, مشکل نہ پیدا کرو, کیا تم لوگوں کو اسلام سے بھگانا چاہتے ہو, کیا تم کو یہ معلوم نہیں ہے کہ پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں اس میں کچھ بوڑھے بھی ہیں, کیا تم کو پتا نہیں ہے کہ پیچھے جو لوگ کچھ کھڑے ہیں اس میں کچھ کمزور بھی ہوں گے, کیا تم کو یہ پتا نہیں ہے کہ پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں اس میں ممکن ہے کوئی بیمار بھی ہو, کیا تم کو یہ پتا نہیں ہے کہ ہر آدمی بیکاری نہیں ہے, آدمی کو دوسرے کام بھی ہو سکتے ہیں, کسی کام پر بھی جانا ہو. ارے بھائی خدا سے بھی آپ یہ پڑھ لیجیے, میرے بھائی اعتبار نہ کیجیے, سنی بھی پڑھ لیں شیعہ بھی پڑھ لیں, سب جگہ یہ رسول کی حدیث موجود ہے, رسول نے فرمایا کہ تمہاری نماز پڑھ لیں سب بیکاری تھوڑی ہیں, اپنے دھندوں پر جانا ہے, اپنے کاروبار پر جانا ہے. اب آپ سمجھیے اگر ایک طرف کاروبار ہے ایک طرف نماز ہے تو نماز کو مقدر کیا جائے گا کاروبار پر ہاتھ نہیں آنے دی جائے گی, تاکہ فائنینشیل پوزیشن امت کی ڈاؤن نہ ہو. خود رسول کے بارے میں خیر تمہیں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی مرتبہ آج کا وقت میں نے مزید مطالعہ کیا تو میں دیکھا نہیں, یہ ایک مرتبہ کا واقعہ نہیں ہے, یہ سنت رسول تھی, طریقہ رسول تھا کہ اگر حضور نماز جماعت پڑھا رہے ہیں اور نماز جماعت میں اس وقت مسلمان عورتیں بیچاری اتنی مسلمان نہیں تھی جیسی آج کی مسلمان ہو گئی ہیں, اچھا میں نے کہا آج عورتوں کا مسجد میں جانا ممنوع ہے, رسول کے زمانے میں جاتی تھیں, ابھی نہ جاتی ہوئی واقعہ کون ہوتا, اور یہ واقعہ متعدد مرتبہ ہوتا کہ اگر عورتیں پیچھے نماز پڑھ رہی ہیں اور کوئی عورت اپنے بچے کو لے کر آئی معصوم بچے کو اور نماز شروع ہوئی اس کے گوشت سے اتار کر وہاں بٹھا دیا اور تھوڑی دیر میں بچے نے رونا شروع کیا تو رسول غیر معمولی تیزی کے ساتھ نماز کو ختم کر دیتے, اور جب کوئی پوچھا گیا کہ حضور آپ نے اتنی تیزی سے نماز کو ختم کر دی, کیا تم نے نہیں سنا ایک بچہ رو رہا تھا, بچے کے رونے سے ماں کا دل بے چین ہو رہا تھا, اسلام ماں کے دل کو سکون دینے کے لیے آیا ہے تڑپانے کے لیے نہیں آیا. سمجھیے میرے بچوں میرے جوانوں اسلام کو سمجھو, یہ ہے اسلام کی نماز رسول, اس سے بہتر نماز کون ہو سکتی, وہ شارٹ کر دی جائے گی کہ ایک ماں کا دل بچے کے رونے پر چلتے ہیں. اب جہاں پہ میں پہنچوں گا آپ اور باتیں سن رہے آپ کے سامنے, سب سے مشکل آتی ہے ہمارے یہاں طہارت و نجاست کی, نجس اور پاک کوئی مسئلہ ہی نہیں بھائی, بھیا یہ کوئی مسئلہ نہیں, کیوں, اس لیے کہ اسلام یہ بات فرض کرتا ہے کہ ہر شے پاک ہے, کیا رولنگ ہے, کل بار بار کر رہا ہوں، شیخ سنی شیعہ فقہ حنفی و مالکی و شافعی و جعفری، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی رولنگ ہے، ایک لفظ کا فرق ہے، وہ دونوں کو ماننے کا میں دونوں کہہ دیتا ہوں کے سامنے، کل شیء طاہر حتی تعلم انہ قذر، یہ ہمارے یہاں کا جملہ ہے، ان کا جملہ ہے کہ حتی تعلم انہ قذر، دونوں کو فرق نہیں، قذر مجھے کو کہتے ہیں، یعنی ہر شے پاک ہے، ہر شے پاک ہے، لو بھیا کریم چیک، ہر شے پاک ہے جب تک تم کو اس کے نجس ہونے کا 10% 10% یقین نہ ہو جائے وہ پاک، کس حد تک یقین ہو جائے بتاؤں، سن لیجیے، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں لکھنؤ میں ایک صاحب تھے، اس وہاں کے ہمارے میں مسجد تھی، وہ بےچارے وہاں نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے، اور روز یہ تماشا ہوتا تھا کہ وہ آتے تھے تو پتا نہیں انگلی ان کی کیسے نجس ہو جاتی تھی، انگلی کی پہلی پور نجس ہو جاتی تھی، وہ انگلی کی پور کو پاک کرتے تھے تو پانی یہاں تک آ جاتا تھا، وہ کہتے تھے یہاں یہ بھی نجس ہو گیا، پھر وہ یہاں پاک کر کے تبھی پانی یہاں تک آ گیا، نزدیک یہ ہوتا تھا کہ پور سے شروع کرتے تھے اور ڈبکی پر ختم ہوتا تھا، یہ شیطان کے بس ہوتے ہیں، ہمیں جب شریعت کہہ رہی ہے تو آپ سے کیا تعلق، ہر شے پاک ہے، ہر شے پاک ہے، جب تک کہ آپ قسم کھا کر یہ نہ کہیں کہ یہ نجس ہے، اب آپ کیا سن لیجیے اس سے متعلق آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہاں سے اس کی لمیٹیشن رہے ہیں، ایک شخص نام ہے جعفر صادق، علیہ السلام و سلام کی خدمت میں آتا ہے، کہتا ہے فرزند رسول آج قصہ ہو گیا، کیا قصہ ہوا، کہا میں گھر سے نکل رہا تھا تو میں تھوڑا سا یوگرٹ دہی ایک پتیلی میں رکھ دیا تھا، ایک کوٹھی کے اندر، بتائیے کہ میں جواب آپ سنوں گا، ایک کوٹھی کے اندر ایک پتیلی میں ہنڈیا میں دہی میں نے رکھ دیا تھا، اس پر ڈھکنا ڈھانگ دیا تھا، باہر نکلنے لگا تو دروازہ گھیر دیا تھا، گھیرنا کہتے ہیں نا، جنہیں کنجی نہ لگائی جائے ویسے پش کر دیا جائے، گھیر دیا تھا، تھوڑی دیر کے بعد جب میں واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا ہے، اس کے اندر سے ایک کتا نکل رہا ہے، کتے کے منہ میں دہی بھرا ہوا ہے، کتے کے منہ میں دہی بھرا ہوا ہے، اندر گیا تو میں دیکھا کہ جس برتن میں وہ دہی رکھا ہوا تھا اس کا ڈھکنا گرا ہوا ہے، ہنڈیا میں تھوڑا سا دہی کم ہو گیا ہے، کہا گیا کہ نجس، آپ بتائیے، ہنسے ہنسے، امام نے پوچھا کہ یہ تو سب ہے، تم نے اپنی آنکھ سے کتے کو دہی کھاتے دیکھا تھا کہ نہیں، اچھا اب اس کو تو لیگل اسٹائل میں سرکمسٹینشل ایویڈنس کہتے ہیں نا، کہ حضور اپنی آنکھ سے اس کمبخت کو کھاتے نہیں دیکھا، لیکن کرائم تو سارے موجود ہیں، دروازہ کھلا ہوا ہے، وہ اس کے اندر سے برآمد ہو رہا ہے، ہانڈی کا ڈھکنا گرا ہوا ہے، دہی کم ہے، نہیں اس میں دہی بھرا ہوا ہے، کتنی کتنی گواہیاں موجود ہیں، یہ کچھ نہیں، تم نے اپنی آنکھ سے دیکھا تھا کہ نہیں، کپا، یہ ہے یقین کی حد، شریعت مشکل پیدا کر رہی ہے حل کر رہی ہے، بتائیے جتنا لوگوں کو شک ہوتا ہے، ذرا ذرا کی بات نہیں، ہائے نجس ہائے نجس ہائے نجس ہائے نجس، اب ہے ہی تو نجس، سب پانچ جب تک کہ یقین نہ ہو جائے، اور یقین کی پوچھ میں آپ بتا دی کہ آنکھوں سے دیکھیے، اگر 0.1% بھی بینیفٹ آف ڈاؤٹ مل سکتا ہے وہ آپ دے دو، وہ شہ پاک سوائے گوشت چربی کے، وہ مسالہ بات بتاؤں، باقی جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں جب تک میں نے آپ سے کیا کہ آپ اللہ کی قسم کھانے چاہیے کہ بھائی اللہ کی قسم یہ نجس ہے، बस अब वो छुपका हो गया बेचारा, उसने ठीक है ना, मैं उसको पाक मानूंगा, लेकिन दिल में उसके थर 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 थर, ये क्या जी क्या जी क्या जी क्या जी। कुछ रोज गुजरे, कुछ नहायत मेहमान आया, बीवी कहीं गई भी थी, मेहमान लगा इस तरह से आ गया। अरबों में कुछ जो लेकिन मेहमानदारी बहुत होती है, उनमें जज्बा ही होता है। अब उसने सोचा कि मैं क्या करूं, घर में कुछ सामान नहीं था, एक मोटा मुर्गा पला हुआ था, उसने कहा लाओ इसी को काट के और इसी की करी या सालन जो भी हो बना के मैं अपने मेहमान को खिला दूं। चुनांचे वो चुपके से कोने में गया, सुई उसने हाथ में ली और वह को लिटाया, मुर्गा तगड़ा था, गर्दन पर उसकी सुई जलाई, थोड़ी सी गर्दन कटी थी कि वो फड़क के निकल गया और खून की सीटें इसके कपड़ों पर सब पर पड़ रही था। इसने झपट के पकड़ा उसको और उसको दबा किया। सुनिए गदरा, इतने में उसको पेशाब लगने लगा, वही मौके की इंतजार था, यही मौका था, पेशाब लगने लगा। अब वहां जाने उन्होंने वॉशरूम थोड़ी होते थे, पुराने जमाना था, वो बाहर निकला किसी खंडर में जाके पेशाब करे, घर के पीछे खंडर था, वो उसी सूरत से कि कपड़ों पर खून के धब्बे पड़े हुए हैं, ताजा खून के, और हाथ में छुरी लिए हुए जिससे खून टपक रहा है, और गया पेशाब करने के लिए। वहां देखा कि एक लाश पड़ी जिसको अभी किसी ने मारा है, अभी किसी ने चाकू मारा है, उसको मार के भाग गया और लाश वहां सामने पड़ी है। अब ये हैरत से देख रहा था कि ये क्या हुआ कि पुलिस आ गई, पुलिस आ पकड़ गई। अब वो लाश कह रहा है, अरे भाई कैसा मुर्गा, कैसी मुर्गी, लाश सामने पड़ी है, देखिए वही सारी 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 डालते मौजूद, लाश सामने पड़ी हुई है, दामन का खून का धब्बा है, हाथ में सुई और खून टपक रहा है, तू ही काटे तो कौन काटे, उस जमाने में डीएनए टेस्ट थोड़ी होता था भाई, उस जमाने में डीएनए टेस्ट क्या होता, कोई कमी छोड़ के मुर्गे का खून का आदमी का खून है, खून है वो खून तो। मौला को खबर हुई, मौला तशरीफ ले गए, आपने कहा इसको छोड़ दो, इसको अल्लाह ने सबक सिखाया है, ये इस्मत मासूम है कि अगर किसी के जहन में सुबह बाद आ जाता है इमाम मासूम के बारे में, तो उधर से इलाही निजाम मुतहर्रिक हो जाता है सफाई देने के लिए। चूंकि मुझे मालूम है कि तेरे दिल में वसवसा आया था, तो अल्लाह ने वो ही सूरत हाल बिल्कुल पैदा कर दी। तो जवानों और बच्चों और बूढ़ों, यहां से ये बात आप लिख के जाइए, याद करके जाइए, हर शय पाक है, कुल शहिनता है, हर शय पाक है, जब तक के आपको उसके नजर होने का 100% यकीन न हो जाए। ये दिन मुश्किल है, और एक बात सुन लीजिए, बहुत लोग बहुत एहतियात करते हैं, ये एहतियातें और मुसीबत बन गई हमारे लिए भाई, ये एहतियातें और प्रॉब्लम बन गई हमारे लिए भाई। खुदा ने जो सिस्टम बनाया यू हैव टू फॉलो दैट, आप उसको फॉलो करना है। आप अगर यूरोप में गए हैं, जहां ईसाई भी हैं, यहूदी भी हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, या हिंदुस्तान आए कि जहां सिख भी हैं, मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, सब हैं, अब आप खड़े हुए लखनऊ के स्टेशन पर या बम्बई के स्टेशन पर या हैदराबाद के स्टेशन पर या किसी और स्टेशन पर, चाय वाला गुजर रहा है, सर्दी केस पड़ रही है, चाय गरम, अब आप कहें तो ये हिंदू ना हो,
और वो हो हिंदू आप मुसलमान समझ के तहत ही जाइए। तहकीक की जरूरत नहीं है, तहकीक वाजिब नहीं है। तो पहली बात तो ये कि हर शय को आप पास समझे, कहें तो कल मैं वो लेता हूँ किताब, सब मेरे पास एतबार करेंगे जो मसाइल बयान कर रहा हूँ वो मेरे तकरीबन सभी के मसले यही है, लेकिन फिलहाल जो मैं बयान कर रहा हूँ अब्दुल्ला जिनका मैं मुकल हूँ उनके ये मसले हैं जो बता रहा हूँ आपको। तहकीक की जरूरत नहीं है, तो ये हिंदू है जो मुसलमान है उसके अगर चोटी भी हो बात है, तो हो सकता है मुसलमान भी कभी भी मन्नत की चोटी रख लेते हैं, किसी ऐसा नहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। हर शय को पाक समझे आप और खूब खाए इतमान से, पहले किताब पास होते हैं यहूदों का सारा और अब तो मजूस को भी शामिल कर लिया गया है, मैं मुस्तैद नहीं हूं, लेकिन मेरी अगर ज्यारत मुझे मौका मिला ऐतवानी की तो मैं कुछ मारूजात उनकी खिदमत में कुछ मसाइल के सिलसिले में पेश करूंगा। हिंदुओं को हम अहले किताब तो नहीं कह सकते, इसलिए अहले किताब वो होते हैं कि जिनको कुरान में अहले किताब कहा हो, लेकिन चूंकि मैंने गीता पढ़ी है और गीता में तौहीद खालिस के अलावा दूसरी कोई शय नहीं है, क्योंकि उसमें बुत परस्ती की मजम्मत की गई है, क्योंकि उसमें बुत परस्तों को अहमक करार दिया गया है और वेदांत से इससे भी ज्यादा है, वेदांत में हुजूर के आने की तस्वीर हुई जाती है, तो बातें तो उसमें सब ऐसी पाई जाती है जो इलाहानी किताबों में होती हैं, लेकिन क्योंकि कुरान ने नहीं कहा तो हमको हम कम से कम शिव्य अहले किताब जरूर कह सकते हैं, समझे। ये मैं खिदमत का शुरू का लोगों कह दिया ठीक है तो ठीक है, ये तो खत्म कर सकते। तो अब आप हाथ मिलाती हाथ में मिला रहा हूँ पता नहीं कौन हो, ये गर्मी का जमाना है पसीने निकल रहे हैं, आप क्या मालूम कि ये हिंदू है कि क्रिश्चियन है कि यहूदी है, कौन है नो प्रॉब्लम, आप बोलाइए शेख हैं, थैंक यू वेरी मच हाउ आर यू, और पूछने की जरूरत नहीं कि आपका नाम भगत राम है, ये मिस्टर डेविड है या कुछ और है, बताओ तो सदे बखत लिख दीजिए। देखिए ऐसी बात न कीजिए, मैं आपके लिए आसानियां पैदा कर रहा हूं, मिसाल दी गई हमारे कोई गुना छुटा थोड़ी है, बनी साहिल सूरतुल बकरा पूरा मशहूर उसको पढ़िए तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि दस बहु बकरा, हमारा हुक्म है कि गाय दबा कर दो, तो तस्वीर में आया कि बनी साहिल से कहा गया था गाय दबा कर दो, कोई भी गाय पकड़ के बड़ी उसी कांड देते वो खत्म हो जाता। अब उन्होंने पूछा उनका कैसी हो गाय, तो ऐसी हो ऐसी हो ऐसी और कैसी हो, उनका ऐसी हो ऐसी हो ऐसी हो, तो जितना पूछते जाइएगा उतना फंसते जाइएगा। शरीयत ने आपको जो रुखसत दी है जो लिवरेज दिया उससे फायदा होता है, यह है तहारत का मसला, छोड़ लो जो आगे हो गया। अब तहारत में तो तहारत ये होती है तो आज नदी से और पार से और ये है वो है, एक मैं टेक्निकल अल्फाज को छोड़ रहा हूँ, बाद हालतें ऐसी होती है कि जहाँ इंसान बहुत वाजिब हो जाता है, वहां भी रोक नहीं है गुस्ल वाजिब है, मगर उससे ज्यादा जरूरी है तुम्हारी सेहत, अगर तुम पर गुस्ल वाजिब है और ये अंदेशा है कि गुस्ल करोगे खुदा न खासा तो बीमार हो जाओगे या बीमारी बढ़ जाएगी, तो अब हमारा हुक्म ये है क्या गुस्ल न करो, तैमम कर लो। सहाबा कराम का बड़ा मरतबा है भाई, अब देखिए सहाबा कराम का वाकया हमारे सामने आता है, ये वाकया मैंने किसी शिया किताब में नहीं देखा है, सुन्नी सोशल में देखा है, हम उनका एहतराम करते हैं। एक सहाबी का वाकया है, मुकद्दर सहाबी जंग में बेचारे जख्मी हो गए, अच्छे खासे जख्मी हो गए, हम देखिए सहाबा कराम मरतबा करीम का करते हैं, आप वाकया देख लीजिए, तो जंग में जख्मी हो गए और कुछ जरा ज्यादा मर्दानगी थी, क्या किस्सा था नहीं कह सकता, कि उसी हालत में जख्मी थे उसी हालत में तो गुस्ल भी वाजिब हो गया, तो सहाबाए किराम ने उनको गुस्ल दे दिया। सहाबाए किराम ने बड़ा मतलब बताई, उनको गुस्ल दे दिया। नतीजे भी हुआ कि एक गुस्ल देने के बाद ही दूसरे गुस्ल की नौबत आ गई, उनका इंतकाल कुरमलाल हो गया, शरीर हो गया। बेचारे मैं बरादरा ने सुनत से हाथ मैं बहुत एहतराम करता हूँ, तो किसी दिल में आप अपनी किताबों में पढ़ लिया और रसम सही मुझसे ले लीजिए। बात जब रसूल को इस वाक़े की खबर हुई कि एक जख्मी मुकद्दस सहाबी को दूसरे लोगों ने गुस्ल दे दिया और गुस्ल देने के नतीजे में उनका इंतकाल हो गया, भैया आपकी किताब में पढ़ लीजिए प्लीज, मैं अरबी मेरा पढ़ दे रहा हूँ कि सुबह न रहे। तो रसूल ने क्या फरमाया, फरमाया कतलहुमुल्लाह कतलू, अल्लाह इन गुस्ल देने वालों को मारे, उन्होंने उस बेचारे की जान ले दी, उसे तैमुम क्यों ना करा दिया, उसे तैमुम क्यों ना करा दिया। हम उनका बहुत एहतराम करते हैं, लेकिन देखिए हाजिर खान लेवल के लोग थोड़ी होते हैं। अब कितने मोहतरम मुकद्दस एक साहब एहतराम, लेकिन इनमें ऐसे भी लोग जान पाए जाते थे कि जिनको ये तक नहीं मालूम था कि तैमुम का मौका कौन सा होता है, गुस्ल का मौका कौन सा होता है। पहले बैठ में आपने सवाल दिखा सकते उसका मजमत है, एहतराम है, सब कुछ है, उससे मैं इनकार नहीं हूँ, लेकिन जो पोजिशन है जो वो है वो आपके सामने है। तो आपकी सेहत क्योंकि हिफाजत जान शरीयत के मकासिद में है, लिहाजा आपकी जान को खतरे में नहीं डाला जा सकता। गुस्ल न कीजिए, गुस्ल करेंगे तो गुस्ल बातिल है आपका। तैमुम कीजिए, डिसिप्लिन, यू हैव टू फॉलो द डिसिप्लिन। लाल दिल चाह रहा हो गुस्ल करे, दिल चाह करे, महबूद क्या चाहता है, महबूद चाहता है तैमुम करो, हम तैमुम करेंगे। देख रहे हैं आप शरीर की आसानी। अब नमाज में आ जाइए, नमाज में कितनी आसानियां हैं। नमाज तो एक ऐसी इबादत है जो किसी हाल में छोड़ी नहीं जा सकती, टूट नहीं सकती, मगर रेगुलेशन कितने हैं। खड़े होकर नहीं बैठ सकते हो, नो प्रॉब्लम, बैठ के पढ़ लो। बैठ के नहीं पढ़ सकते हो, लेटे पढ़ लो, उसमें भी जहमत हो रही है, खाली यहां से इशारे से रुको, सुजूद बजा लिया। और देखिए मैं बरादराने अहले सुन्नत से दस बस्ता गुजारिश करूंगा, मेरे खुलूस को समझे, खुदा के लिए अपने यहाँ आप इज्तिहाद का दरवाजा खोल लें, जैसे हमारे यहाँ खुला हुआ है। मैं हजरत इमाम मुनीफा का बड़ा एहतराम करता हूँ, सुनिरा मेरी बात सुने तो मैं उनसे सवाल करता हूँ, बहुत बड़े आलिम थे, बड़ी मुसीबतें बेचारे ने उठाई हैं, आपको मालूम नहीं है। हजरत इमाम मालिक उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, बड़ी अजीम शख्सियत थे। हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल बड़ी अजीम शख्सियत थे। हजरत इमाम शाफी मोहब्बत अहले बैत के सरकार थे। अरबी जबान में एक ही लफ्ज है जिसके जबर जेर के बदलने से मानों में फर्क हो जाता है, जन्ना। जन्ना के माने क्या है, जहां आप जल्दी न जाए, इंशाल्लाह जाए जरूर मगर देर में जाए, इतने नाम से आखिरत में जो जन्नत है वह अरबी में जन्ना कहा जाता है। जुन्ना जी का पेश आ गया, जुन्ना के माने क्या है, सिफर। जिन्ना, जिन्ना के माने क्या है, जिन। अभी कौन कह रहा है, इमाम शाफी फरमाते हैं अली युन हुब्बहु जुन्ना। देखिए कदा कितना बाकमाल शायर है, इतने बड़े फकीर होने के बाद फरमाते हैं अली युन हुब्बहु जुन्ना कसीमुन नार वल जन्ना। وصي المصطفى حق امام الانس والجن. یہ
کون کہہ رہا ہے؟
امام شافعی کو معلوم کا دیوان دیکھ لیجیے. علی وہ ہیں کہ جن کی محبت جہنم سے چھپا رہے. اگر تمہارے دل محبت علی موجود ہے تو تم جہنم میں نہیں جا سکتے ہو. وسیم النارے وسیم النارے ول جنت. ابھی امام شافعی سے پوچھے مجھے آپ کیا پوچھ رہے ہیں بھائی؟ ابھی جنت کس نے بنائی؟ اللہ نے. جہنم کس نے بنایا؟ اللہ نے. مگر وہ باٹیلا نہیں اتھارٹی دے رہی اس نے مولا علی کو. امام شافعی فرما رہے ہیں وسیم النارے ول جنت. علی ہے جنت اور جہنم کے بانٹنے والے. وصی المصطفیٰ حقا یہ پیغمبر کے وصی ہیں. امام الانس والجن اور جنوں انس کے امام ہیں صلوات و محمد والے. میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, پورے احترام کے بعد ان کا بھی احترام اور برادران سنت کا بھی احترام. کوئی صاحب مجھے دکھا دے کہ ان چار اہموں میں سے کسی نے کہا ہو کہ ہم پر اشتہار کا دروازہ بند کر دو, آپ کیسے ان پر الزام لگا سکتی؟ کبھی انہوں نے کئی لوگوں کی بلکہ منع کیا. میں کہا کہ دیکھو یہ ہمارا فتویٰ ہے, لیکن اگر بفر قرآن میں کوئی ایسی بات مل جائے ہمارے فتوے سے ٹکراتی ہو, ابھی کوئی ایسی بات مل جائے کہ ہمارے فتوے سے ٹکراتی ہو تو ہمارے فتوے کو ذکر کرتے ہیں. وہ دروازہ کھولا, آپ نے دروازہ بند کر دیا, تو آپ میں آپ کھولے کھولے اشتہار کا دروازہ, ورنہ پھنسے رہیے. زمانہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. 1500 برس میں جو حالات نہیں تبدیل ہوتے وہ آج 15 برس میں تبدیل ہو جاتے. تو ایک وہ شاید جو جمی بھی ہے, ایک متحرک شہر کا کیسے ساتھ دے گی اگر آپ اشتہار کا دروازہ نہیں کھولیں گے؟ اس لیے ہمارے الحمد للہ اشتہار کا دروازہ کھلا رہا ہے اور مسائل کے حل نکلتے چلے آ رہے ہیں. حج میں بے شک ہماری علماء کا فتویٰ تھا پہلے اور رسول جدید تھی کہ اگر کوئی عورت حج کرنے کے لیے جا رہی ہے تو کوئی نہ کوئی محرم اس کے ساتھ ہونا چاہیے, اکیلی نہ جائے نہ محرم کے ساتھ نہ جائے. بس پہلی بات ہے. اس لیے وہ زمانے میں حج کا سفر بوئنگ پر تھوڑی ہوتا تھا بھائی, ایئر بس پر تھوڑی ہوتا تھا. حضرت اونٹ جن کی کوئی کل سیدھی ہی نہیں, ایک ایک سفر میں مہینوں لگ جاتے تھے. پڑھے آپ پرانے زمانے کا 150-200 برس پہلے کے سفر نامے, بڑے دلچسپ پڑھیے کہ تاجکستان سے لوگ جاتے تھے وہ کیسے جاتے تھے, ہندوستان کے لوگ جاتے تھے, افغانستان سے لوگ کیسے جاتے تھے. ایک مصیبت ہوتی تھی بھائی. اس عالم میں بے شک یہ بات صحیح تھی کہ عورت بغیر محرم کے نہ جائے. شیطان کہیں دیکھا سکتا ہے کسی کو, اس کے ساتھ جھوٹ کو بیٹھا دے گا. خدا نہ خاصا خدا نہ خاصا. اس لیے شرط تھی کہ ایک گارڈ اس کے ساتھ ضرور ہو, ایک محرم اس کے ساتھ ضرور ہو. آج حالات بدل گئے. شریعت کا اصول ہے سن لیجیے, یا تغیر الفتویٰ بتغیر الاحوال. حالات کے بدلنے کے ساتھ ساتھ شریعت منجمد نہیں ہے, ٹھیک نہیں ہے, متحرک ہے. یا تغیر الفتویٰ بتغیر الاحوال, حالات کے بدلنے سے فتویٰ بدل جاتا ہے. آپ کو اونٹ پہ کون جاتا ہے بھائی؟ اس کے لیے آپ مجھے بتائیے. وہ سب جاتے ہیں اونٹوں پر, کوئی صاحب گدھے پہ جاتے ہیں, کیٹلک کار, ٹویوٹا, کرولا, اور بتاؤ, مرسیڈیز, آلٹو. آلٹو چھوٹی ہوتی ہے وہ کھانے کا ہے, کون ہی ہوتی تم نے کہاں مرسیڈیز اور کہاں آلٹو ہم نے کیا لگی جی. اب وہ مسئلہ ختم ہو گیا بھائی. آپ کراچی سے جلدی جاتے 4 گھنٹے चार घंटे में पांच हजार मार रहा, वो तो हंसी याद ही आ रहा है, आपको पाकिस्तान नियति होती है, फिर आदमी को खलबत का मौका कहाँ मिलता है भाई। लिहाजा वो हालात बदल गए, हालात बदल गए तो हमारे यहाँ चूंकि इतिहाद का दरवाजा खुला हुआ था इसलिए महरम की तरफ खा दिया। वहां अब उनके कानून यही है, तब उसको हम क्या कर सकते हैं, उनका कानून हजरत खादिमुल हरमैन का, खादिमुल हरमैन है वो, इनकार नहीं करता, चला वो मैं भी हूं, कुछ कह नहीं रहूंगा, कहता नहीं कुछ मटर के मारे, खादिमुल हरमैन है मगर उनके दो हरम हैं, दो हरमों के खादिम, एक व्हाइट हाउस एक बकिंगम पैलेस, ये दो हरम है कि जिसके वो ज्यादा मुझे छोड़िए नहीं, उन्होंने दिखा ला के दिखा दूंगा सर, वो किसी शिया की लिखी हुई नहीं है, जुबैर अहमद साहब की लिखी हुई है, जुबैर अहमद शिया को ही सकते मेरे पास यही मौजूद है, शायद तो बाबा क्रोशन हो जाएंगे। अब सऊदी गवर्नमेंट कानून है भाई, कुछ हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ फिक्री एतबार से क्योंकि हालात बदल गए इसलिए फतवा तब्दील हो गया, सलावत मोहम्मद वाला। अच्छा तो ये चीजें नदी पाक करने वाली भी चीजें हैं, जिसमें एक है इस्तेहाला, इस्तेहाले के माने क्या है कि जब कोई नजिस है, देखिए एक होता है नजिस, एक होता है मतलब नजिस, तो आप लोग पर नहीं समझ पाते, नजिस एक अलग है, मतलब नजिस एक अलग है, नजिस को जो पाक ही ना हो सके, जैसे खिंजीर, उसे आप समंदर में डुबो के निकालेंगे वो और नजासत फैलाएगा समंदर, उसको सूखा ही रहने दीजिए, गनीमत है ना, लेकिन जो मेरा रुमाल गीला उस सुअर से टच हो गया तो ये नजिस नहीं, ये मुतनजिस है, ये एक नशा हो जाएगा। तो एक मतलब सलवात देने आप, तो एक वो शायद जो नजिसुल ऐन है, अगर उसकी माहियत बदल जाए वो कम हो जाए, माहियत चेंज हो जाए तो पाक हो जाती है, जो असल है जिस्म के लिए वही असल है रूह के लिए, काफिर नजिस है, मुशरिक नजिस है, है नजिस। अब ये कैसे पाक हो, टेलीफोन ला के धोते दीजिए उसको, बीमारी में नहलाइए, हॉस्पिटल पर ले जाइए, मनोरा में ले जाइए, जितने का है वोते दीजिए, वो बेचारा वैसे ही रहेगा, वो बेचारा वैसे ही रहेगा। जानवर बकरे को ग्राह पे लिटाया, उसे कद्दू का नाम लेके उसे दवा कर दिया, गया बेचारा, वो मैता हो गया, मुर्दार हो गया, नजिस हो गया, और आपने कहा बिस्मिल्लाह व बिल्लाह वल्लाहु अकबर, काम वही छुरी वही हाथ हुई, जबान बदल गई, अल्फाज बदल गए, शेर सद्दू आए तो बकरा नजिस हो गया, अल्लाह का नाम आया तो पाक हो गया। ऐसा मसाइल मैं करूँ समझते रहिए किधर जा रहे हैं मेरे सारे, गैरुल्लाह के नाम पर अगर आपने किसी बकरे को दबा कर दिया, गया वो मैता है, मुर्दार है, नजिस है, बिस्मिल्लाह वबिल्लाह वल्लाहु अकबर कुल्ला रूह ओके, उसे दबा कीजिए तब वो पाक होता है। अब किसी इंसान को पाक करना तो क्या करें, उसको भी लेटा है जब लारू उसे गले बहुत सुन रखे हैं, बिस्मिल्लाह वबिल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाह के नाम का असर यह है कि जानवर पर नहीं लिया गया तो मुर्दा, और जबा के वक्त नाम ले लिया गया तो पाक। फिर घनश्याम दास मेरे साथ आए, घनश्याम दास बफर मूर्ति पूजा करते थे, मूर्ति पूजा से उनको नफरत हो गई, उनका ला इलाहा इल्लल्लाह मूर्ति इबादत के लायक नहीं है, अल्लाह इबादत के लायक है। ठीक है, मुवाहिद हो गए वो, मगर अभी काफिर है, पाक नहीं हुए, अभी काफिर है। अरे आप मुसलमान हुजूर की कदर नहीं करते, हुजूर की अजमत का एहसास नहीं करते। ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बाद ठीक है आदमी मुवाहिद हो जाएगा, लेकिन अगर मुस्लिम काफिर था तो मुस्लिम तो नहीं रहेगा लेकिन काफिर फिर भी रहेगा। अगर इसे पाक होना है तो जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं कहेगा पाक नहीं हो सकता। अब विलायत का भी यही मसला था, लेकिन अब वक्त नहीं रह गया, इंशाल्लाह मौका तो कल मैं एक मतलब मसलवाद देने आपको रहा। तो देखिए शरीयत मुश्किल कुशा है और शरीयत कितनी आसान है, किसी भी मामूली से मामूली शहर को भी आप अगर जानेंगे नहीं तो मुश्किल हो जाएंगे, और जानते चले जाएंगे तो मुश्किलें हल होती चली जाएंगी। एक बात और देखिए कि अगर इंसान के दिल में ईमान है, कितने रुख है जो पेश हुआ आपके सामने, सच्चा ईमान है तो मुश्किलें उससे सब कुछ छीन सकती हैं, उसके लबों की मुस्कुराहट नहीं छीन सकती, तो मुस्कुराता रहेगा, उसके दिल की धड़कन कोई नहीं बढ़ा सकता, उसके ब्लड प्रेशर कोई हाई नहीं कर सकता। एक छह महीने का बच्चा जब मजदूर में कर्बला इन गोद में खून उगल रहा था, आसमान और जमीन कांप रहे थे, मलाइका सकते नहीं, सबकी नजरें हुसैन पर थी, हुसैन क्या फरमाए थे, फरमाए थे पालने वाले, ये मुसीबत भी आसान है, ओ बाबा ये मुसीबत भी आसान है, इसलिए कि तेरी रजा के लिए कुर्बानियां पेश की जा रही। बस दो मिनट में जिसे पहुंच जाएंगे बहुत मुश्किल हो जाती है। आज आप जैनब के लाडलों का हाल सुनते हैं, उससे पहले एक बच्चे का हाल और सुन लीजिए। हुसैन का सिपाही था मुस्लिम इब्ने औस असदी, इनकी उम्र 80 वर्ष से ज्यादा थी, सर और रईस के बाल सफेद थे, मैदान में आए तो कपोतों को ठीक करने के लिए रुमाल से कस के आए थे, आए लड़े बहुतों को कत्ल किया, जख्मी हुए घोड़े से गिरे, सांस उखड़ चुकी थी, दुनिया से जा रहे थे कि इतने में हबीब सराहाने पहुंचे, कहा मुस्लिम अगर तुम्हारे बाद ये मालूम होता कि कुछ दिनों जिंदा रहना है तो तुमसे कैसा वसीयत करते जाओ, वसीयत पर अमल करने में बहुत सवाब होता है, आगे आगे तुम जा रहे हो पीछे पीछे मैं आ रहा हूं, वसीयत के फरमाइश क्या करूं, ये आवाज मुस्लिम के कान से टकराई, जबान को कुछ कह न सकते थे, हाथ उठा हाथ भी नहीं बल्कि थरथराती उंगली उठी और हुसैन की तरफ इशारा किया कि अब भी वसीयत है, हबीब देखो कुछ हो जाए मगर फातिमा के लाल को पर हाथ ना, ये वसीयत करके मुस्लिम उंगली के इशारे से दुनिया को रुखसत हुए। हुसैन ने अपने शहीद की लाश उठाई, लाकर खेमे के सामने रखी, अभी मुस्लिम के सराहने से हुसैन रुकने न पाए थे कि खेमे का पर्दा बुलंद हुआ, एक 12-13 वर्ष का बच्चा दौड़ता हुआ मैदान की तरफ चला, लंबी तलवार जमीन पर हद देती जाती थी, उसे इसका बच्चा कहाँ जा रहा है, पकड़ के लाओ उसको, इमाम के सिपाही दौड़ते हुए उसको लेकर आए, कहाँ जा रहा है, कहा मैदान में, कहा मालूम नहीं कि मैदान में तलवार चल रही है, मेले चल रही है, सुनिए बच्चे का कर्बला के बच्चे, कहा मौला मैं देख रहा हूँ जानता हूँ सब कुछ देख रहा हूँ, फिर क्यों जा रहा है, कहा इसलिए कि मुस्लिम के शहीद होने के बाद आपके दिल पर मैल नहाने पाए कि अब आप कोई बचाने वाला नहीं, जब तक खेमों में हम छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं हम अपनी जानों की कुर्बानियां देते रहे, इमाम ने सुनाया था तुझे मालूम नहीं कि नाबालिग बच्चों को से जिहाद साबित होता है, कहा मालूम है मुझे, लेकिन मेरी और कासिम के मुंह में कोई खास फर्क नहीं है, कासिम भी तो शहीद होने वाले हैं। तो इमाम ने कहा कासिम को मैं इजाजत दूंगा, तेरे लिए जरूरी था कि या तेरा बाप इजाजत दे या कम से कम तेरी माँ इजाजत दे। कमल आपने मेरा मसला हल कर दिया, देख कर बड़ा बच्चे कितने जहीन है, कमल आपने मेरा मसला हल कर दिया, बाप ने जहाँ तक ताल्लुक है तो बाप की लाश साहब कदम पड़ी है, माँ का जहाँ तक मसला है तो मेरे जिसका लिबास मेरी माँ ने पहनाया, कबर लिबास मेरी माँ ने बांधी है, मेरी माँ ने कहा कि मैं यहाँ पर जाकर मैं जान कुर्बान करूँ। ये सहाबी का बच्चा और दो बच्चे जैनब के और नो मोहम्मद, प्यारे प्यारे बच्चे। जब कई बनी हाशिम में श्री कई शहीद हो गए तो जैनब ने फिजा से कहा कि फिजा जरा और नो मोहम्मद को बुलाओ। बच्चे आए ना के सामने सर झुका के खड़े हो गए, मादरे ग्रामीण विचार कहा कि क्या मैंने तुमको इसी दिन के लिए पाला था, देखो फुला शहीद हो गया, फुला शहीद हो गया, फुला शहीद हो गया, तुम भी सामने जिंदा खड़े हो, मैं इसी के लिए पाला था तुमको। क्या मादरे ग्रामीण आप नाराज ना हो, हम तो बार बार तड़प तड़प कर मामू जानते थे, लेकिन हम क्या करें कि वो हमें मैदान जिहाद में जाने की इजाजत नहीं दे रहे। गैरम ने कहा मेरे भाई को बुलाओ, ठीक है कुछ बातें सुनिए कुछ बातें सोचिए। हुसैन के ऐसे मामू से जब जैनब की ऐसी बहन ने यह कहा होगा कि भैया आप मेरे बच्चों को शहीद होने की इजाजत क्यों नहीं दे रहे, सोचिए सोचिए तो इमाम के दिल पर क्या गुजरे। बहरहाल शाहजादी ने कुछ सुनता से तड़प से कहा कि इमाम ने सर झुकाया, बच्चे करबला के मैदान में आए, छोटे बच्चे थे मगर हुसैन कोई सिपाही छोटा हो या बड़ा यूं ही पकड़ो गया, मार के मरा, मार के सही हुआ, लश्कर के काबू में नहीं आ रहे थे, लश्कर ने तरक्की की कि दोनों बच्चों को अलग अलग कर, और जब दोनों बच्चे गिर गए तो थोड़ी देर के बाद जी के बाद जी गिरे दोनों बच्चों की आवाज आई कि अम्मू जान हम दुनिया से जा रहे हैं। क्या गुजरी होगी हुसैन के दिल के ऊपर, हुसैन पहुंचे दो बच्चे थे अब्बास को भी साथ ले लिया, कहा अब्बास तुम भी मेरे साथ आ जाओ, आए और आने के बाद दोनों की लाशें उठाई, मैं जब तक कोई बात देख नहीं लेता आदमियों पढ़ने की कोशिश नहीं करता, एक लाश अब्बास ने उठाई एक लाश हुसैन ने उठाई, लाकर खेमे के दरवाजे पर रखी। अक्सर लाशें जब खेमे के दर पर आई हैं तो जैनब तड़प कर खेमे के बाहर आ गई, आपको याद होगा, अरे एक बार की लाश आई है तो जैनब आ गई तो खेमे के बाहर, अरे भतीजे की लाश पर जो बहन छुपी आ गई खेमे के बाहर, अपने बच्चों की लाशें आई हैं और फिजा ने जाकर कहा दीदी आपके बच्चे आ गए, मैं फिक्र रहा हूँ बगैर देखे नहीं कहता, जैनब ने जवाब दिया मेरे बच्चे आ गए, क्या मैंने इसीलिए भेजा था कि आ जाए, आकर देखिए तो के मंदिर क्या है, जिंदा नहीं आए हैं लाशें आई हैं, तो जैसे ये सुना कि लाशें आई हैं बच्चे सजदा महबूब में सरक दिया, पालने वाले तेरा शुक्रिया कितना अदा करूं कि तूने मेरी कुर्बानी को कबूल कर लिया और मेरे बच्चे मेरे भाई परेशान हो।